ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड। आप में से कोई बहन या कोई भाई साकार बाबा से मिला है तो हाथ खड़ा करे। आप मिले हैं बाबा से, साकार बाबा से? तो साकार बाबा से मैं समझता हूं पूरे विश्व के अंदर 1 या 2% भाई या बहन होंगे जो साकार बाबा से मिले हैं, ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा। मैं आत्मा, लकी आत्मा हूं जो साकार बाबा की मैंने पालना ली है 5 साल। मैं उस टाइम में 20 इयर्स ओल्ड था, 20 साल, और हमारे माता पिता जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, और उन्होंने ऐसा नियम बनाया था कि जब तक जैन मंदिर नहीं जाएंगे तब तक आपको पानी भी नहीं पीना है, नाश्ता भी नहीं करना है, दवाई भी नहीं खानी है। तो ये नियम था हमारे घर में। तो जब मेरा 20 साल हुआ, एज 20 साल की हुई, तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि पूरे एशिया में सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। वहां मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैं धनबाद चला गया। धनबाद ये बिहार में आता है। तो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो शहर से बाहर था, धनबाद का जो शहर है उससे बाहर 3-4 माइल बाहर में था। वहां कोई जैन मंदिर नहीं था, वहां आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास कोई जैन मंदिर नहीं था। तो मुझे बहुत ख्याल होता था कि जैन मंदिर नहीं है तो मैं नाश्ता कैसे करूंगा या पानी कैसे पीऊंगा, जैन मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो एक वैराग्य हो गया लाइफ में। तो मैं एक जैन साधु के पास गया और उनसे पूछा मैंने कि मुझे इसी जन्म में, ये जो मेरा जन्म है, इसी जन्म में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उनसे मैंने सलाह मांगी। तो उन्होंने कहा कि वहां एक शिखर जी करके जैन टेंपल है, उसको पार्श्वनाथ भी बोलते हैं जैन धर्म में, वो उसकी आप 3 बार यात्रा करो तो आपको भगवान मिल जाएगा। जो आप भगवान को चाहते हैं कि इसी जन्म में मिले तो आपको भगवान मिल जाएगा यदि आप 3 बार यात्रा करें। पर वो यात्रा आसान नहीं है। रात को 12 बजे वो यात्रा शुरू होती है और ठंडे पानी से स्नान करके, कोई भी हो, या तो जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उसमें ठंडे पानी से स्नान करके और नंगे पैर, पैर में जूता नहीं और कोई सपोर्ट नहीं, कोई लाठी लेना पहाड़ी पे जाने के लिए, और कुछ खाना पीना नहीं पूरे रास्ते, और किसी को याद भी नहीं करना भगवान के अलावा। तो यात्रा 12 बजे शुरू होती है रात को, और ऊपर पहुंचते हैं पहाड़ी के ऊपर तो सुबह के 8 या 9 बजते हैं। 9 घंटे की यात्रा है। और उसके बाद 24 तीर्थ जैन धर्म में हैं, उनके चरण बने हुए हैं मार्बल के, तो उन सबकी यात्रा करनी, उनके सबके जल चावल चढ़ाना वगैरह, तो उसमें 2-3 घंटा लग जाता है। तो 12 ऊपर बज जाते हैं और नीचे आते आते शाम के 6 बज जाते हैं। तो फिर वो एक यात्रा हुई, मतलब रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे तक। और फिर मैं बहुत यंग था, 20 साल की एज थी, तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, एक दिन का रेस्ट लेता है और फिर दूसरी यात्रा शुरू करता है। तो मैं यंग था और भगवान की प्राप्ति करने की बड़ी इच्छा थी, तो मैंने रात के 6 बजे आया शाम को और 12 बजे फिर यात्रा शुरू की। तो इस तरह मैंने 4 यात्रा की। शिखर जी जो पारसनाथ टेम्पल है पहाड़ी के ऊपर, बहुत ऊंची पहाड़ी है, तो 4 यात्रा पूरी की। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पढ़ता था वहां आया, तो मैं पोस्ट ऑफिस में खड़ा हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज का पोस्ट ऑफिस अलग होता है, हमारा अलग पोस्ट ऑफिस था। तो एक योग की किताब आई मेरे मेल के अंदर, तो मैं वो देख रहा था योग की किताब। तो एक स्टूडेंट आए मेरी क्लास में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, उन्होंने कहा इस योग से तो आपको एक जन्म की प्राप्ति होगी, और मैं एक ऐसा योग जानता हूं जिससे 21 जन्म की प्राप्ति होगी। तो मुझे अंदर की जो आत्मा सोई भी थी वो जागी। तो मैंने उस भाई से कहा, उनका नाम है मोहन सिंघल, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन है, मधुबन में ही रहते हैं वो, आपने शायद जानते भी होंगे, मिले भी होंगे कोई जो इंजीनियरिंग विंग के मेंबर हैं। तो उनसे फिर मैंने कई बार पूछा कि वो कौन सा योग है जिससे 21 जन्म की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में भी ऐसा मानते हैं कि जो इस जन्म में हम कर्म करते हैं उसका जन्म नेक्स्ट बर्थ जो होता है हमारा, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। तो उनसे कई बार मैंने ये पूछा, मैंने कहा वो बताओ कौन सा योग है। तो वो धनबाद से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है सिंदरी, आपने किसी ने सुना होगा, सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, वहाँ फर्टिलाइजर बनता है। तो वो सिंदरी गए शिव जयंती पर और वापस आए, तो उन्होंने कहा कि मार्च 1964 को यहाँ धनबाद में सेंटर खुलेगा, तब मैं बताऊंगा आपको। उनकी एज मेरे से भी कम थी, उनकी होगी 17-18 साल की, मेरी थी 20 साल की। तो 8 मार्च 1964 को सेंटर खुला धनबाद में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया सेंटर के अंदर 9 मार्च को, नेक्स्ट डे। पहले दिन तो ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे वहां आने के लिए निमंत्रण दिया। तो क्या हुआ, एक अद्भुत बात हुई मेरे साथ। मैंने सीधा पैर दरवाजे के अंदर रखा, सेंटर के दरवाजे के अंदर, और मैंने लाइट देखी यहां पर, सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो लाइट जब देखी मैंने, वो किसकी थी लाइट, या तो आत्मा की या परमात्मा की, वो तो मुझे नहीं पता, परंतु ये जरूर मुझे विश्वास हो गया कि ये भगवान का ही स्थान है, और अभी मुझे जैन धर्म में भी कहीं नहीं जाना और कहीं नहीं जाना, और जो बहनें कहेंगी उसको मैं 100% मानूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो अभी मैंने ये नहीं सोचा कि लॉजिक होना चाहिए भगवान का, या साक्षात्कार होना चाहिए, या इसका मैंने तो कोई लेसन भी नहीं लिया था तब तक, पहला दिन ही था मेरा। तो मैंने डिसाइड कर लिया जो बहन कहेंगी उसे मैं 100% मानूंगा, और कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो वो दिन 9 मार्च 1964 और आज हो गया है 13 मार्च 1919, तो मुझे 55 इयर्स। 9 मार्च को मैं स्पिरिचुअल बर्थडे भी मनाता हूं, तो 9 मार्च को मेरे 55 वर्ष हो गए हैं इस ज्ञान में चलते हुए। तो फिर जब ये मेरे साक्षात्कार हुआ, आत्मा का हो या परमात्मा का हो वो तो मैं नहीं जानता था, तो फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा। उस टाइम में ये नियम था यज्ञ के अंदर कि जब हम ज्ञान में आते थे तो बहनें कहती थी कि अभी बाबा को पत्र लिखो। बहुत कॉमन था बाबा को पत्र लिखना, आजकल तो संभव नहीं है, इतने पत्र का कौन जवाब देगा। उस टाइम में करीब 10 या 15 भाई बहन आ जाते थे ना मधुबन में, उस टाइम में केवल मधुबन ही था पांडव भवन, तो समझते थे बहुत बड़ी पार्टी आ गई। 15 आ गए पूरे मधुबन में, रहने का स्थान भी नहीं था उस टाइम में, केवल एरोप्लेन और हवाई महल और एक दो छोटे छोटे स्थान, वहीं पर रहते थे हम लोग। रहने का स्थान भी नहीं था और केवल जो हॉल था वो हिस्ट्री हॉल था, जो ओम शांति भवन है वो भी नहीं था, मेडिटेशन हॉल है वो भी नहीं था। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, बहुत प्यार से पत्र, बहन बताती हैं कैसे लिखना है पत्र, वो भी एक स्पेशल सिस्टम होता है, लैंग्वेज होती है कि कैसे भगवान को पत्र लिखा जाता है। तो प्राण प्यारे बाप दादा, अति मीठे अति प्यारे बाबा, विश्व के रक्षक प्यारे बाबा, देवी पुत्र विनोद का याद प्यार स्वीकार करना जी, इस तरह से वो पत्र लिखा गया बाबा को। और बाबा का ये नियम था, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर ही शिव बाबा आते हैं, कि 24 घंटे के अंदर बाबा पत्र को नहीं रखते थे, 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करते थे। तो 3-4 दिन में, 5 दिन में जवाब आया बाबा का। मैंने कहा, बाबा आपने कहा, ये 64 की बात है कि आपने कहा कि ये विनाश होने वाला है, आप 64 की कभी मुरली किसी ने पढ़ी हो तो उसमें था अभी विनाश होने वाला है, अभी होने वाला है। तो मैंने कहा, बाबा आप कह रहे हैं विनाश होने वाला है, तो मैं, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं। उस टाइम में फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम, 4 साल का इंजीनियरिंग वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो मैं सरेंडर होना चाहता हूं। बाबा को मैंने पत्र लिखा, तो बाबा का एक हफ्ते के अंदर, 5-6 दिन के अंदर जवाब आ गया कि बच्चे, एक बात यह थी कि बाबा अंतर्यामी था, बाबा पत्र पढ़कर ये अंदाजा लगा लेता था कि बच्चे में कितनी सच्चाई है, कितनी सफाई है, कितना डेडिकेशन है, कितना पत्र के अंदर जो लिखा है वो रियली वो चाहता है। ये बाबा का विजन था, बाबा का बहुत बड़ा विजन था, और वो जानते थे बच्चे में कितनी सच्चाई और सफाई है। तो बाबा का पत्र आया कि बच्चे, नूरे रतन, बाबा का पत्र लिखते थे, अभी भी मेरे पास बाबा के कई पत्र हैं, और बहुत कम बाबा पत्र लिखते थे, पर्सनल पत्र। बाबा के पत्र जो आते थे वो सेंटर पर आते थे, सेंटर पर कई भाई बहनों के नाम, और उसमें छोटा सा नाम लिख देते थे और छोटा सा मैसेज। बाबा के लंबे पत्र नहीं होते थे, तो बाबा ने मुझे पत्र जो लिखा है, कई पत्र हैं बाबा के, वो हॉस्टल में लिखे थे मुझे, पर्सनल पत्र। तो बाबा को पता था कि मैं कितना नजदीक हूं बाबा के, तो मैं हॉस्टल में रहता था, इंजीनियरिंग हॉस्टल में, तो वहां बाबा के पत्र आते थे। तो बाबा का पत्र आया कि बच्चे, 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो। उस टाइम में 4 साल की इंजीनियरिंग थी, आज तो मैं समझता हूँ 5 साल की है। 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो तो फिर बाबा डायरेक्शन देंगे क्या करना है। तो मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर बाबा को लिखा और इस बीच में मैं हर साल बाबा के पास जाता था। धनबाद से 2 दिन लगते थे, धनबाद से दिल्ली, दिल्ली से माउंट आबू, 2 दिन आना 2 दिन जाना, और 7 दिन अलाव करते थे बाबा मधुबन में रहने के लिए, 7 डेज। तो बाबा ने कहा कि 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो तो फिर बाबा डायरेक्शन देंगे क्या करना है। मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर बाबा को लिखा, बाबा आपने कहा था कि 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो फिर बाबा राय देंगे, डायरेक्शन देंगे। उसको हम श्रीमत कहते हैं, जो भगवान के डायरेक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं श्रीमत। श्री का मतलब श्रेष्ठ, मत माना भगवान के डायरेक्शन, श्रेष्ठ डायरेक्शन, तो उसको 100% मानना होता है। यदि नहीं मानते हम तो वो फिर कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन किया तो जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, उस काम में तो मिलेगी नहीं सफलता। वो जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में बाबा ने श्रीमत दी है उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर बाबा ने कहा, और मैंने दूसरी बात ये है वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। जो बाबा के राय होती हैं, बाबा की मुरलियों में जो डायरेक्शन आते हैं उसका कभी उल्लंघन नहीं किया। हमेशा मैं साकार बाबा से डायरेक्शन लेता था, जो भी करता था मैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी यज्ञ का काम, वो साकार बाबा से पूछता था पत्र के द्वारा। तो फिर बाबा ने कहा कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो फिर बाबा राय करेंगे। ये 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो भी माइनिंग इंजीनियरिंग में ही किया मैंने। उसको बोलते हैं PGPT, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो 2 साल का वो किया, फिर बाबा को मैंने पत्र लिखा। मैंने कहा बाबा आपने कहा था कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो उसके बाद में आप राय देंगे, तो वो भी मैंने कर लिया। अभी मैं सरेंडर होना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता, केवल आपकी ही सर्विस करना चाहता हूँ, जहाँ आप भेजो वो मैं करना चाहता हूँ। फिर बाबा का पत्र आया, वही 1 वीक के अंदर बाबा का पत्र आ जाता था। फिर बाबा का पत्र आया कि बच्चे तुम ऑलरेडी सरेंडर हो, जो मैं चाहता था सरेंडर होना। बाबा ने कहा तुम ऑलरेडी सरेंडर हो क्यों, वो भी फिर बाबा हर चीज का एक्सप्लेन करते थे। जो कोई भी स्टेटमेंट देते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो उसको फिर एक्सप्लेन करते थे। बाबा ने कहा तुम्हारा मन बाबा में लगा हुआ है और तुम्हारी बुद्धि बाबा में लगी हुई है, अपना लौकिक में बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन और बुद्धि सरेंडर है। शरीर का कोई मतलब नहीं, शरीर को तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे तो तुम ऑलरेडी सरेंडर हो। तो मैं साकार बाबा के टाइम से सरेंडर हूं, ऐसे बहुत कम है जो सरेंडर हुए परंतु साकार बाबा ने उनको सरेंडर नहीं कराया, बाद में हुए कई साल बाद में, परंतु मैं, मुझे साकार बाबा ने सरेंडर किया। अच्छा, अभी कुछ बाबा की, साकार बाबा की कुछ इंस्टेंस या कहानी सुनाता हूँ आपको। बाबा के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो सुनाता हूँ। मुझे बचपन से कुछ चीजों का शौक था, जैसे उस टाइम में 60s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में कॉइन्स होते थे अलग अलग कंट्रीज के, उसको कलेक्शन करना, स्टैम्प्स कलेक्शन करना और कई चीजें कलेक्शन करना, और एक होता था ऑटोग्राफ, एक छोटी सी किताब होती थी रंगीन पेजों की, उस पे ऑटोग्राफ लिया करते थे VIP के। जैसे मैंने लिए थे स्पोर्ट्समैन जो हुए हैं इंडिया के, और मुरारजी देसाई जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुए उनके, तो मैंने कहा ब्रह्मा बाबा के पास गया मैं और मैंने कहा बाबा आपका मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। शौक था मुझे ऑटो सबके वीआईपी के ऑटोग्राफ लेने का, तो मैंने कहा बाबा आपके ऑटोग्राफ चाहिए, ये मेरी बुक है ऑटोग्राफ बुक, इसमें आपके ऑटोग्राफ चाहिए, माना सिग्नेचर चाहिए। तो बाबा ने कहा ईशु दादी को आपने देखा होगा, वो आती हैं योग कराती हैं, वो बाबा की ब्राह्मणी थी उस टाइम में, यानी बाबा जो पत्र पढ़ते थे वो ईशु दादी पहले पत्र पढ़ती थी और उसको अंडरलाइन करती थी पत्रों को और फिर बाबा को बताती थी ये इम्पोर्टेंट बात है इसका आंसर करना है। और फिर वो बाबा ईशु दादी के साथ बैठते थे 9 बजे के करीब सुबह, 9:30 और 10:30 बजे वो डाक निकल जाती थी आबू से, किसी भी जगह की डाक थी, वो बाबा सुबह लिखते थे पत्र। 9 क्लास पूरा हुआ, क्लास के बाद नाश्ता किया, फिर बाबा जो पत्र आते थे उनको पत्रों का जवाब देते थे। तो ईशु दादी वो पत्रों का पढ़ते के वो फिर बाबा के द्वारा उसका आंसर लेती थी। तो बाबा ने कहा मेरे से कि बच्चे ये जो ऑटोग्राफ बुक है ये ईशु दादी को दे दो और फिर ईशु दादी से ले लेना है। ये नहीं कहा मैं साइन करूंगा सिग्नेचर करूंगा या क्या करूंगा, पर उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ये ऑटोग्राफ बुक ईशु दादी को दे दो। तो मैंने ईशु दादी को ऑटोग्राफ बुक दे दी। मैंने कहा बाबा ने कहा है कि ये ऑटोग्राफ बुक आपको दे दें और बाबा साइन करके मुझे दे देंगे। तो नेक्स्ट डे मैं ईशु दादी के पास गया, मैंने कहा बाबा के सिग्नेचर हो गए होंगे, आप वो बुक मुझे वापस कर दो। तो ईशु दादी ने कहा कि वो कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, ब्रह्मा बाबा मनुष्य आत्मा नहीं है, शिव बाबा मनुष्य आत्मा नहीं है, ये जो आप बुक लाए हो वो केवल मनुष्य आत्माओं के सिग्नेचर की होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा का सिग्नेचर क्या होता था किसी को मालूम है? वो ओम लिखते थे, ब्रह्मा नहीं लिखते थे, ब्रह्मा बाबा नहीं लिखते थे, बाबा नहीं लिखते थे, वो पत्र के नीचे ओम लिखते थे। तो जब वो ईशु दादी ने कहा कि ये ऑटोग्राफ बुक केवल मनुष्य आत्माओं के सिग्नेचर की होती है, भगवान के सिग्नेचर की नहीं होती, तो उस दिन से मेरी जितनी भी हॉबी थी वो सब छूट गई। कई सारी हॉबी थी मुझे, स्टैम्प्स कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, मैच कलेक्शन, ऑटोग्राफ, पुरानी चीजों का संकलन करना, पुराने स्टैम्प्स, ये सारी चीजें छूट गई। मैंने कहा जब भगवान ने कह दिया कि इन चीजों में ध्यान नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। तो एक तो ये कहानी हुई। दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको, कई कहानियां हैं, ये टाइम से पूरी हो जाएंगी तो ठीक है।
Bye।
ये बात है 1964 या 65 की। बाबा ने मुरलियों में कहा कि इस जन्म में जो तुमने पाप किए हैं, ये मुरली की बात बता रहा हूं, वो यदि मुझे बता देंगे, मुख से बता देंगे, तो बाबा आधे माफ कर देगा। ये बाबा की मुरलियों में बाबा के महावाक्य आए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है कि आधे पाप माफ हो जाएं भगवान के द्वारा। तो मैंने 64 पेजेज की उस टाइम में नोटबुक आती थी, आजकल नहीं मालूम मुझे, 64 की बात कह रहा हूं, 64 पेज की मैंने एक ब्लैंक नोटबुक ली और उसमें 5 साल से और 20 साल तक जो भी मैंने गलतियां की, पाप किए, वो सारे उसमें लिख दिए। भर गई वो 64 पेज की नोटबुक, भर गई। मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है कि भगवान को सारी गलतियां बता दो और आधी माफ हो जाएं, और आधी जो हैं बचेंगी वो योग के द्वारा माफ हो जाएं। तो जब जाएं सूक्ष्म वतन में धर्मराज के पास तो कोई सजा ना खानी पड़े। तो वो मैंने 64 पेज की पूरी नोटबुक भर दी, जो भी याद आया। 5 साल से पहले याद नहीं रहता, 5 साल के बाद और 20 साल तक मेरी एज थी, 20-21, तब तक जो भी मैंने पाप किए सब लिख दिए। फिर मैं धनबाद से, जहां इंजीनियरिंग में पढ़ता था, माउंट आबू आया और ब्रह्मा बाबा से मिला, और ब्रह्मा बाबा को पर्सनली मिलकर कहा कि बाबा आपने मुरली में कहा कि जो इस जन्म में पाप किए हैं या गलतियां की हैं या अवज्ञा की है भगवान की, वो बताएंगे, भगवान को तो हम जानते भी नहीं थे उस टाइम में, वो मुझे बताएंगे, माना ब्रह्मा बाबा को बताएंगे, तो आधे माफ हो जाएंगे। तो ये मैंने गलतियां की हैं, ये मैंने किताब जो मैंने 64 पेज की बनाई थी वो बाबा को मैं देना चाहा कि बाबा मैं ये आपको देना चाहता हूं और आधे आप माफ कर दीजिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा इतनी बड़ी किताब थोड़ी पढ़ेंगे, आप बाबा के झोपड़ी में आओ। आपकी, आप में से कितनों ने बाबा की झोपड़ी देखी, हाथ उठाओ। मतलब मैं समझता हूँ 80-90% ने बाबा की झोपड़ी देखी। उस टाइम में इतनी एडवांस झोपड़ी नहीं थी, एक ऐसी छप्पर की तरह झोपड़ी थी, वो 3 तरफ से खुली हुई थी, एक तरफ बाबा बैठते थे। अभी तो बहुत अच्छी झोपड़ी बना दी बाबा की, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो बाबा ने कहा झोपड़ी में आओ और बाबा को अपने मुख से सुनाओ, जो भी गलतियां की हैं, जो भी पाप किए हैं, अपने मुख से सुनाओ, बाबा वो किताब नहीं पढ़ेगा। फिर क्या हुआ, फिर एक साइड में बाबा बैठे, एक साइड में मैं बैठा और किताब पढ़ता गया, जो गलतियां की थी मैंने, पाप किए थे 5 साल से 20 साल तक, 21 साल तक। और बाबा का जो राइट हैंड है वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता था, बाबा का राइट हैंड जब मैं बोलता था तो बाबा का राइट हैंड ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली, ऐसे नहीं करते थे बाबा, थोड़ा स्लाइटली, जब बाबा का राइट हैंड ऐसे मूव होता था तो मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता था कि मेरे आधे पाप कट रहे हैं। जब भी बाबा ऐसे करते थे मुझे लगता था मेरे आधे पाप कट रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा दोनों बैठे हुए हैं और मेरे आधे पाप काट रहे हैं, यह ऐसा महसूस होता था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि कुछ बातें मुझे याद आई जो उस बुक में नहीं लिखी थी, भूल गया था। क्यों क्यों याद आई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो फेस था और उनकी जो बॉडी थी वो एक दर्पण के समान थी उस टाइम, प्रैक्टिकल वो दर्पण के समान थी। आप दर्पण के आगे मिरर के आगे बैठे हो तो आपसे तो मिरर के से तो कुछ छिपेगा नहीं। और वो था अव्यक्त मिरर। अव्यक्त मिरर के आगे आप बैठे हो तो सब कुछ आपको दिखाई देगा कि आप में क्या क्या कमी है। तो मुझे ये पूरा विश्वास हो गया, ब्रह्मा बाबा तो जानते ही हैं मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि बाबा को सारी गलतियां बता दूं तो आधी माफ हो जाएंगी। तो जो उस टाइम में बुक में नहीं लिखी थी मैंने, वो भी याद आनी शुरू हो गई। क्यों? और मेरे मन में आया कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो फिर वो 100% पाप रह जाएंगे, अभी तो 50% हो जाएंगे। तो वो भी मैंने बता दिया बाबा को, वो भी बाबा ने आधे माफ कर दिए। तो इस तरह से मेरे आधे पाप माफ हो गए। उसके बाद मैंने गलती नहीं की। उसके बाद मैंने श्रीमत का 100% पालन किया, जो बाबा मुरली में कहते थे, जो बाबा पत्र में लिखते थे, मुझे पर्सनली बहुत पत्र आए, वो सारा फिर मैंने फॉलो किया। तो मैंने हमेशा श्रीमत की फॉलो किया और उसी में कल्याण है। जो बाबा मुरली में कहते हैं या पत्रों में कहा मुझे, मेरा तो बहुत पर्सनल कनेक्शन था। और बाबा की फैमिली जो है, ब्रह्मा बाबा की फैमिली, ये पुट्टू दादी एक बाबा की डॉटर थी, अभी तो नहीं है, 4-5 साल हो गए, वो मेरे पर्सनल केयर में थी। मैं हॉस्पिटल में मैनेजर था, अभी भी हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, तो उसमें वो एडमिट थी। तो वो बाबा की हिस्ट्री बताया करती थी, ब्रह्मा बाबा की, और वो बाबा की डॉटर थी, उनकी एज थी करीब 93। उनका पर्सनल केयर मेरी जिम्मेवारी थी। तो एक थी निर्मल शांता दादी, वो भी मैं पर्सनली केयर करता था। एक थे नारायण दादा और उनका लड़का था मनोज। तो बाबा की जो फैमिली है वो बहुत नजदीक है मेरे। तो इस जन्म में बाबा की फैमिली इतना नजदीक है तो भविष्य में भी बाबा और बाबा की फैमिली बहुत नजदीक रहेगी, ये मैं मानता हूं। बाबा की फैमिली से बहुत नजदीक रिलेशन है मेरा। फिर बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि जो इस दुनिया के अंदर दुख हैं, जितने भी दुख हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ये नहीं कहा जितने सुख हैं उसकी लिस्ट बनाओ, जितने दुख हैं उनकी लिस्ट बना के मेरे पास भेजो, मुरली में कहा था बाबा ने। तो मैंने मोर देन 100 जो भी दुख दुनिया में हैं वो लिख के बाबा को भेजे। बाबा बहुत खुश हुए। मैंने चरण किया बुद्धि से कि क्या क्या दुख हैं और वो कितने मतलब परेशान करते हैं दुख। तो बाबा ने पत्र लिखा, बच्चे तुमने दुखों की लिस्ट जो भेजी है वो मैंने पाई और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा धन्यवाद की बजाय खातिर करना जी ऐसा लिखते थे, खातिर करना जी, ये सिंधी शब्द है, खातिर करना जी मतलब उसको एक्सेप्ट किया मैंने और उसकी खुशी है मुझे, खातिर करना जी बाबा ने लिखा। फिर एक बार की बात है कि बाबा मुरली चलाई, बाबा ने हिस्ट्री हॉल ही था उस टाइम में और कुछ नहीं था। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 64, 65, 66, आप में से आधे से ज्यादा तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम में, आधे से ज्यादा। तो बाबा ने मुरली चलाई और फिर बाबा मुरली चला के जो बाबा की झोपड़ी है उसके पास अंगूर की बेल लगी हुई थी उस टाइम में 60s में। तो मैंने भी बाबा के पीछे पीछे मैं भी आया और बाबा को फॉलो किया। तो बाबा ने एक अंगूर बेल लटकी हुई थी, अंगूर लटके हुए थे, एक अंगूर तोड़ा और मेरे मुंह में दिया। मैंने कहा भगवान के हाथ से मैं अंगूर खा रहा हूं तो कितना मीठा हो गया, जैसे बिल्ली के बेर कितने मीठे बन गए। भगवान को खिलाया उन्होंने। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये अंगूर कैसा है? वो ग्रीन था, मतलब इतना मीठा तो तैयार नहीं हुआ था। मैंने कहा, भगवान के हाथ से खा रहा हूं अंगूर तो कितना मीठा होगा, वो मिठास तो खत्म ही हो जाती है, जो भगवान ने खिलाया तो मीठा ही बन गया ना। तो मैंने कहा, बाबा बहुत मीठा है। एक बार की बात है, ये मैं समझता हूं बरसात के दिन थे, तो बरसात के दिनों में मधुबन में बहुत कम पार्टी आया करती थी, बहुत कम। उस टाइम में बरसात बहुत होती थी और मुझे इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो छुट्टी नहीं मिली, बरसात के दिनों में छुट्टी मिली तो मैं मधुबन आया। 68 की बात है ये, 1968। तो मैं आया और दो भाई और जम्मू से आए हुए थे, बस तीन थे पूरे मधुबन में, पूरे मधुबन में पांडव भवन में तीन, पार्टी ऑफ थ्री। फिर बाबा ने कहा कि आज जाने का दिन था उस दिन, तो जिस दिन जाने का दिन होता था मधुबन से जाते थे उस दिन बाबा से मिलने का चांस मिलता था। एक जब आते थे मधुबन में तब बाबा मिलते थे, फिर मुरली में मिलते थे बाबा, फिर पिकनिक में मिलते थे। वेंसडे को हमेशा पिकनिक होती थी, थर्सडे को हमें हमेशा ब्रह्मा भोजन होता था, ब्रह्मा के साथ भोजन, ब्रह्मा भोजन वो होता था। तो हम ब्रह्मा के साथ भोजन किया, ब्रह्मा के साथ पिकनिक की, जिसका गायन भी है शास्त्रों में, ब्रह्मा भोजन। तो मधुबन में तीन थे और तीनों को बाबा ने कहा, आज बाबा तुम्हारे से मिलेंगे। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो उस जो आप में से कईयों ने बाबा का कमरा देखा होगा, जिसमें बाबा का बेड भी है, बाबा की संदिल भी है जहां बाबा बैठते थे, बाबा मीट करते थे, बच्चों से मिलते थे। तो बाबा ने कहा, मेरे आज एक तो बाबा झोपड़ी में मिलते थे, एक बाबा अपने बेडरूम में मिलते थे, दो जगह बाबा मिलते थे। और जो हिस्ट्री हॉल है वहां बाबा क्लास कराते थे, कोई मीटिंग वगैरह भी होती थी तो भी वहां करते थे, ब्रह्मा भोजन होता था वो भी वहां करते थे हिस्ट्री हॉल में। और आपस में कभी 10-15 भाई बहन बैठ के मीटिंग करते थे तो वो भी वहां करते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो आपने देखा होगा बाबा का कमरा, उसमें जो दो दरवाजे हैं, फर्स्ट दरवाजा जो बाबा का बेड है उसके पास है और दूसरा दरवाजा जो सोफा है वहां है। तो जो पहला वाला दरवाजा है उसमें एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दा ऐसा था कि आप देख सकते हो अंदर क्या हो रहा है, नाम मात्र का था वो पर्दा, ऐसे जैसे आजकल पर्दे होते ना, वो टाइट, अंदर जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, उस तरह का नहीं था। क्योंकि बाबा बहुत साधारण थे, बहुत साधारण, कभी बाबा ने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, बहुत साधारण कपड़े पहनते थे। कितना भी जाड़ा हो तो भी मैंने नहीं देखा कि बाबा ने कोई बहुत ऊंची शॉल पहनी हुई हो या कोट पहना हुआ हो या बहुत गर्म कपड़े पहने हुए हों, बहुत साधारण थे बाबा, प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल। तो बाबा ने वो जो दो जम्मू से भाई आए हुए थे उनको कहा, लच्छू दादी बाबा की ब्राह्मणी थी, ये यीशु दादी जो थी उनकी छोटी बहन। तो लच्छू दादी को कहा कि जो दो भाई आए हैं जम्मू से उनको बुलाओ पहले। तो उनको बुलाया, बाबा मिले, एक मिनट लगा होगा, बाबा के पास इतना टाइम नहीं होता था, परंतु एक मिनट में ही बाबा इतनी शक्ति दे देते थे कि जो दूसरा कोई एक घंटे में भी नहीं दे सके। बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी ब्रह्मा बाबा की, कि वो डायरेक्ट एक मिनट तक आपको दृष्टि नहीं दे सकते, इतनी पावरफुल। यदि एक मिनट ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि दे दी तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो ऐसा बाबा बस ऐसे दृष्टि देते थे, ऐसे कभी किसी को डायरेक्ट दृष्टि नहीं देते थे, बस इतनी पावरफुल दृष्टि होती थी बाबा की कि देखा ऐसा घूम रही है दृष्टि। तो कईयों को तो उसी में साक्षात्कार हो जाता था, कईयों को साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से। तो वो जब दो अंदर थे भाई, तो मेरा संकल्प चला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ऐसा था कि जो भी ब्रह्मा बाबा को देखता था और संपर्क में आता था, वो यही सोचता था कि ब्रह्मा बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे कृष्ण था ना और गोपियां थी, तो कृष्ण को सब गोपियां ये समझती थी कृष्ण मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमेशा हर गोपी यही समझती थी, और हर ब्राह्मण ये समझता था ब्रह्मा बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इतना अट्रैक्शन था ब्रह्मा बाबा में, बहुत अट्रैक्शन था, एक मैग्नेट थे ब्रह्मा बाबा। तो जब वो दो भाई अंदर थे जम्मू वाले, तो मेरा संकल्प उठा, बाहर में बाहर खड़ा था, वो जो पर्दा है पर्दे के बाहर में खड़ा था, तो मेरा संकल्प उठा कि मैं बाबा के इतना नजदीक हूं और मैं बाबा को इतना प्यार करता हूं, और बाबा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया पहले, मुझे नंबर दो में क्यों बुलाया। पर हर चीज का, हर बाबा के एक्शन का कुछ ना कुछ गुह्य रहस्य होता है, ये मानना पड़ेगा, बाबा बहुत दूर की सोचते हैं। तो फिर बाबा ने बुलाया मुझे, वो दो भाई चले गए, निकल गए बाहर। बाबा ने कहा देखो, बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, बाबा कभी कभी कहते हैं मुरलियों में, परंतु ऐसा नहीं है, बाबा जानते हैं कि तुम्हारे संकल्प क्या चल रहे हैं, ये बाबा जानते हैं, प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। तो बाबा ने कहा मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा नहीं, पर बाबा को पता था क्या संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसका कारण है, मुझे तुम्हें अपनी गोदी में बिठाना था, क्यों बाबा कहते हैं ना गोदी के बच्चे, जो ब्रह्मा बाबा के नजदीकी बच्चे हैं वो बाबा की गोदी में बैठते हैं, गोदी के बच्चे ब्रह्मा बाबा के या शिव बाबा के भी कह सकते हैं। तो मुझे तुम्हें गोदी में बिठाना था और अव्यक्त वतन का सैर कराना था और लाइट का साक्षात्कार कराना था और अशरीरी अवस्था का साक्षात्कार कराना था, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे नंबर पे बुलाया और उनको पहले नंबर पे बुलाया, उनका मुझे पता था भविष्य, तो मैं उनको पहले गोदी देता और वो मुझे पता है उनका भविष्य, और वो नहीं चलेंगे तो उनके ऊपर पाप चढ़ जाएगा, जो भगवान की गोदी लेके भी ज्ञान में नहीं चले उस पे पाप चढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें गोदी देनी थी, इसलिए तुम्हें दोबारा यानी सेकंड नंबर पे बुलाया और वो चले गए, तो उन्होंने नहीं देखा कि वो बाबा की गोदी मिली है। तो इस तरह से मैंने बाबा साकार बाबा को टच किया, गोदी ली बाबा की और फिर उड़ गया। फिर इतना अनुभव हुआ भगवान की गोदी लेके कि इस दुनिया में नहीं हूं मैं, इस शरीर का कोई भान नहीं है। ब्रह्मा बाबा का शरीर जो था वो फरिश्ते की तरह था, उसको आप टच करोगे ना ब्रह्मा बाबा के शरीर को, तो ऐसा लगता था कि ये रुई की तरह है, रुई होता है ना कॉटन, कॉटन की तरह उनकी बॉडी थी, हड्डियां नहीं थी, हड्डियों की महसूसता ही नहीं होती थी, बहुत लाइट, एकदम फरिश्ता बन गए थे बाबा। फिर एक दो, अभी टाइम भी नहीं है, एक दो कहानी और सुनाता हूं आपको। फिर जिस दिन हमको जाना होता था मधुबन से वापस अपने शहर जहां भी हम रहते थे, उस दिन मुझे खास, मैं ये नहीं कहता हूं सबको, बाबा ने कहा आज बच्चे बाबा के साथ तुम्हारा नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट होगा। बड़ी खुशी हुई, भगवान के साथ नाश्ता करेंगे। ब्रह्मा भोजन तो करते थे, पिकनिक तो करते थे ब्रह्मा बाबा के साथ। वेंसडे को पिकनिक होती थी ब्रह्मा बाबा के साथ, और थर्सडे को ब्रह्मा भोजन होता था हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा का जो कमरा है, अभी का जो प्रैक्टिकल प्रेजेंट में कमरा है, उसके दो पार्ट थे और बीच में पर्दा लगा हुआ था। उस अभी जो कमरा है उसके दो पार्ट कर दो, तो एक पार्ट में था बाबा का बेडरूम, जिसमें बाबा का पलंग लगा हुआ है और बाबा की संदली लगी हुई है, वो बाबा का बेडरूम था उस टाइम में। और जो आधा पार्ट उसमें जो पर्दा लगा हुआ है, वो बाबा का डाइनिंग रूम था, वहां बाबा भोजन करते थे। तो फिर बाबा ने बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये जो ड्रम होता है ना 55 गैलन का, जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, वो दो ड्रम रखे थे, उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर चादर डाली हुई थी, वो बाबा की डाइनिंग टेबल, कौन सी, रॉयल डाइनिंग टेबल, दो ड्रम, उसके ऊपर पत्थर और उसके ऊपर चादर और बेंच। मैं समझता हूँ कुर्सियां भी नहीं थी उस टाइम में, बेंच के ऊपर हम बाबा के साथ ब्रेकफास्ट किया। और अभी आजकल की रोटियां जो होती हैं ना, इतनी बड़ी होती हैं, बाबा की रोटी होती थी इतनी छोटी, बहुत छोटी, बताशे की तरह। तो बाबा ने वो रोटी और मक्खन मेरे मुंह में खिलाया, तो इस तरह बाबा के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। तो बाबा को मक्खन पसंद था, बाबा की वही आत्मा है जो कृष्ण की आत्मा है, तो कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था और कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। तो कृष्ण को गायों के साथ दिखाते हैं, तो मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को भी मक्खन बहुत पसंद था, तो मक्खन के साथ छोटी सी रोटी फुल्का वो खिलाया बाबा ने। फिर ऐसा था कि मैंने कहा ब्रह्मा बाबा मुझे आपके साथ फोटो चाहिए, मुझे बड़ा फोटो का शुरू से शौक था। तो मैंने कहा ब्रह्मा बाबा के साथ फोटो चाहिए मुझे, तो बाबा के पास गया तो ब्रह्मा बाबा को कहा मैंने, बाबा आपके साथ फोटो चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता था, परंतु मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा बाबा फोटो चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा फोटो नहीं देते हैं। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसी टाइम जब मैं कह रहा था कि बाबा फोटो चाहिए, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा कहा अच्छा फोटोग्राफर को बुलाओ। फिर चंद्रहास दादा जो थे, वो ओरिजिनल चार दादाओं में जो यज्ञ के चार दादा थे, विशु रतन, विश्व किशोर, आनंद किशोर और ये चंद्रहास दादा, चंद्रहास दादा जो थे वो फोटोग्राफर का भी यज्ञ का काम करते थे। फिर चंद्रहास दादा को बुलाया, उन्होंने फोटो खींचा ब्रह्मा बाबा के साथ। तो ये जो मेरा फोटो है, यहां से तो नहीं दिखाई देगा, ये ब्रह्मा बाबा हैं लास्ट में और वो सेकंड में मैं खड़ा हूं ब्रह्मा बाबा के बैक में। और फिर ये एक थाईलैंड के मॉन्क हैं, मोहन सिंगल हैं, और हमारी टीचर हैं वो सुरेंद्र बहन, आजकल बनारस जोन की वो कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये फोटो किसी को चाहिए, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, साकार ब्रह्मा के साथ मेरा फोटो है। तो फिर क्या हुआ कि शिव बाबा एंटर किए ब्रह्मा बाबा में और बाबा ने फिर फोटो खिंचवाया। तो ये वही फोटो है, ये फोटो ब्रह्मा बाबा के साथ। एक ब्रह्मा बाबा के पत्र बहुत आते थे मेरे पास और ब्रह्मा बाबा का फोटो। तो एक बार की बात है, कहानियां तो बहुत हैं परंतु टाइम बहुत शॉर्ट है, एक दो कहानी सुना के मैं खत्म करता हूं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गजेटेड पोस्ट थी, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया। तो मेरा पोस्टिंग हुआ गाजियाबाद में, दिल्ली के पास गाजियाबाद। तो एक साल के बाद में ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट में, उस टाइम में ऐसा नियम था। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने कहा तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो अजमेर जाओ या गोवा, दो जगह जा सकते हैं आप पोस्टिंग ट्रांसफर में। तो मैं मधुबन आया, ये बात है 1975 की, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो मैं मधुबन आया और बड़ी दीदी मेरे बहुत नजदीक थी, जो बड़ी दीदी का फोटो यहाँ है, ये बड़ी दीदी बहुत नजदीक थी। तो बड़ी दीदी को कहा कि हमारे डायरेक्टर जनरल कह रहे हैं कि या तो अजमेर या गोवा पोस्टिंग होगा। तो बड़ी दीदी ने कहा मैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को बुलाती हूँ। तो बाप दादा, जो बाबा का कमरा है, अभी जो कमरा है बाबा का मधुबन में, उसमें दादी गुलजार के द्वारा उनको बुलाया बाबा को, और बाबा को कहा कि दो जगह मेरी पोस्टिंग है, उसमें कहाँ जाना चाहिए, गोवा या अजमेर। फिर बाबा आए, मैं बैठा सामने, बस मैं और बाबा और बड़ी दीदी। तो बाबा से पूछा ये कहाँ जाना चाहिए, तो बाबा ने कहा राजस्थान रेगिस्तान है तो उसको हरियाला करना है। तो राजस्थान माना जिसमें हम रहते हैं, और अजमेर राजस्थान के अंदर है, वो अभी रेगिस्तान है भी रेगिस्तान, उस टाइम में इतनी सर्विस नहीं थी राजस्थान में, और उसको हरियाला करना है माना राजस्थान की पोस्टिंग लेनी है। तो फिर मेरा अजमेर ट्रांसफर हुआ, और फिर बहुत सेंटर्स खुले उस टाइम में, वो तो बहुत लंबी कहानियां हैं, तो अभी वो एक घंटे का और कोर्स क्लास हो सकती है अभी, तो बाबा की याद करेंगे। और अभी आप सभी बाबा की झोपड़ी में चले जाओ, और बाबा की झोपड़ी में जाके बाबा से शक्तियां लो, आज यही आपका लेसन है। आप सभी जाके बाबा की झोपड़ी में बैठ जाओ और बाबा से कहो बाबा जो भी मैंने विकर्म किए वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, और आगे से कोई भी विकर्म या अवज्ञा या पाप नहीं करूंगा, तो आपको बहुत शक्ति बाबा देंगे। ओम शांति। जिसको फोटो चाहिए वो मेरे से बाद में ले सकते हैं।